21 8 दिन बाद महाराज के साथ हस्तिनापुर जाने के लिए मैं रथ में बैठी। सभी नगरजन मुझको विदाई देने आए थे। पिताजी उत्तरी से आगे पूछ रहे थे। मैंने वासुदेव से तथा अन्य सबसे विदा ली। महारानी कुंती के रूप में हस्तिनापुर चल दी। नगर की एक ही महत्वपूर्ण स्त्री मैंने अपने साथ ली थी, वह थी धात्री। मेरा मन अनेक प्रकार की मिश्रित भावनाओं से भराया। मैंने स्मृतियों की कल्पना से अपने देह को सजाने वाले उस नगर को अभिवादन कर मैंने उससे विदा ली। रथ हस्तिनापुर की ओर दौड़ने लगा। नगर की सीमाएं पीछे छूटने लगी। अंत में अश्व नदी का पात्र आया। उस पात्र को देखते ही विवाह के पूर्व की स्मृतियां मेरे मन में धधक उठी, जैसे आग की एक चिंगारी से भीषण आग धधक उठती है। उसकी लहर लहर पर मुझको वे दूर सुनहरे कुंडल दिखाई पड़ने लगे। दो सुकुमार हाथ दिखाई देने लगे। जिन हाथों को राजदंड पकड़ना था वही अप्रतोद और घोड़े की वलगा पकड़ेंगे। विधाता भी कितना क्रूर है। वह मुझको मथुरा के इस नगर में ले गया था। इस नगर में रहते हुए मेरे जीवन में कोई दुख नहीं था, यह उससे देखा नहीं गया। उसने हिमालय से दुर्वासा को यहाँ भेज दिया। अब मैं हस्तिनापुर जा रही थी, लेकिन मेरा वह तेजस्वी लाल चंपा नगरी में था, एक सारथी के पर्णकुटी में। उसकी स्मृति के रूप में मैंने अश्व नदी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। राजकुमारी कुंती कौरवों की महारानी बनकर जा रही थी। स्त्री का जीवन अर्थात अनेक उलट फेर। कभी वह किसी की कन्या, किसी की पत्नी, किसी की माता होती है, तो कभी वह किसी की बहू, किसी की भाभी होती है। उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व कभी होता ही नहीं, होता भी है तो वह दिखाया नहीं जा सकता। 22 हम हस्तिनापुर आए। यह महारानी शकुंतला, सुवर्णा, यशोधरा, तप्ति, शुभांगी, संप्रिया, अमृता, श्रेयसा, सत्यवती आदि महारानियों का नगर था। एक से एक सरस महारानियों ने कुरुकुल की कृति आर्यावर्त में फैलाई थी। नगर में प्रवेश करते ही मैं अवाक हो गई। हजारों नगरजन अपनी महारानी का स्वागत करने के लिए गंगा के पवित्र तीर पर एकत्रित थे। आनंद से मत होकर वे नारे लगा रहे थे, फूल बरसा रहे थे, बाजे बजा रहे थे। गंगा की हर लहर आनंद से नृत्य करती हुई कुरुवंश की वधु का स्वागत कर रही थी। यही गंगा चंपा नगरी में मेरे पुत्र का लालन पालन करने वाली थी, इसलिए मैंने उसको झुककर प्रणाम किया। दूरधाम से हम लोग राजभवन पहुंचे। महाद्वार पर राजमाता ने मेरी आरती उतारी। समीप ही प्रतितुल्य कृत्य पूज्य महाराज भीष्म और धृतराष्ट्र खड़े थे। श्रद्धापूर्वक मैंने उन सबको प्रणाम किया। मुझको आशीर्वाद देते हुए विदुर बोले, बेटी आज राज अशोकचंद से स्कूल का नाता जुड़ गया। भविष्य की दृष्टि से यह अच्छा ही हुआ। कौरवों के अतुल पुरुषार्थ के साक्षी तेरे वाले इस राजभवन में केवल 20 वर्ष की अवस्था में मैंने महारानी बनकर पदार्पण किया। मन पंख की तरह हल्का हो गया। सुख के अमृत घन मेरे सिर पर असंख्य धाराएं बरसाने लगे। 23 हस्तिनापुर में मेरे दिन बड़े आनंद से बीत रहे थे। दिन कब निकलता था और कब अस्त होता था इसका मुझे को पता नहीं चलता था। धात्री प्रतिदिन पराक्रमी पूर्वजों की भिन्न भिन्न कथाएं सुनाती थी। बचपन में तितली के पीछे दौड़ने वाली प्रीथा मेरे मानस पटल से अदृश्य हो गई थी। भोजपुर में दीवार पर सिर पटकने वाली विवश कुंती अदृश्य होने लगी। सचमुच विस्मृति मनुष्य के जीवन की कितनी प्रभावशाली शक्ति है। दैनिक जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटा करती हैं जो सबकी सब मनुष्य के मन में यदि बची रहे तो उनका परस्पर संबंध जोड़ते जोड़ते मनुष्य का मस्तिष्क फट जाएगा, वह पागल हो जाएगा। शायद इसीलिए प्रकृति ने विस्मृति की यह अमूल्य निधि मनुष्य को दी है। मेरी समस्त पूर्व स्मृतियां धीरे धीरे अदृश्य होने लगी। मेरा मन धीरे धीरे मनोरथ की सुइयों से महारानी कुंती के जीवन का राजवस्त्र सीने लगा। मैं अपने भाग से स्वयं ही संतुष्ट होने लगी। अब मेरे लिए किसी वस्तु की कमी थी। मान सम्मान, सम्मति, कीर्ति, प्रतिष्ठा सब कुछ मेरे पैरों पर लौट रहा था। महाराज जैसा प्रेमी, पराक्रमी और सुंदर पति था। प्रतिदिन दर्पण में देख करके झोसा करवाते समय मैं अपने ही प्रतिबिंब से कहती, कौन है तू? महारानी कुंती की ओर इस प्रकार टकटकी बात कर क्या देख रही है? तेरी दृष्टि लग न जाए उसको। फिर भी वह हंसती हुई मेरी ओर देखती रहती। बनावटी क्रोध में मैं शीशी में रखा मुख चूर्ण उस बिंब पर फेंकती। चूर्ण सारे दर्पण पर फैल जाता, प्रतिबिंब अदृश्य हो जाता। मैं एक गोल चक्कर लगाती और महल के गवाक्ष में जाकर खड़ी हो जाती। वहां से गंगा का विशाल पात्र दिखाई देता। गंगा पर असंग कारण्डव पक्षियों को स्वच्छता पर उड़ते देख कर मेरे मन विचार आता कि जीवन में मधुर हिंच को ले देने वाला एक झूला जैसा ही है। एक बार मैं गंगा की ओर एकटक देखती हुई खड़ी थी। पीछे से आकर किसी ने एकदम मेरी आंखें बंद कर दी। मैं चौंक पड़ी। आंखों पर हाथों की पकड़ और अधिक कसती गई। वे महाराज थे। मैं लज्जा से लाल हो गई। मुझको पास खींचते हुए बोले, कुंती पुरुष जब पराक्रम करने लगते हैं तो पराक्रम की एक माला ही तैयार हो जाती है। मैंने तुमको पाया अवश्य, लेकिन राजा के दो स्त्रियां होती हैं, एक उसकी पत्नी और दूसरी उसकी जीती हुई धरती। धरती के बिना राजा ऐसा ही है जैसे कि आयालों के बिना सिंह। मैं सिर झुकाकर सुन रही थी। उनके उस एक ही हल्के से स्पर्श में कैसा जादू था। मेरे शरीर का मयूर पंख फैलाकर नाचने लगा। अपनी उंगलियों से मेरी हनु ऊपर उठाते हुए वे प्रेम पूर्वक मुझसे बोले, यह राज्य पूर्वजों का है। मैं स्वयं जीते हुए राज्य से इसको और समृद्ध करूंगा। कल ही मैं दिग्विजय के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। दिग्विजय का अर्थ निरंतर युद्ध, एक के बाद एक नए सशक्त राज्य से युद्ध, जीवन मरण का खेल। अपने हाथों से मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। उससे उन्होंने मेरे भय का अनुमान लगा लिया। मेरी आंखों में झांकते हुए वे बोले, कुंती घबराओ मत, यह कुरुओं का रक्त है, इसका पराजय से परिचय नहीं है, मैं जल्दी ही लौट कर आऊँगा। उनकी आंखों से आत्मविश्वास की चिंगारियां बाहर निकलने लगी। अपनी सशक्त भुजाओं से उन्होंने मुझको अपने ओर समीप खींच लिया। अपने उत्तप्त होठ उन्होंने मेरे अधरों पर रख दिए। गंगा से आने वाली ठंडी हवा के झोंके दो प्रेमियों के तप्त शरीरों को शीतल करने का असफल प्रयत्न करने लगे। 24। दूसरे दिन कुरुओं की विशाल निर्भीक सेना दिग्विजय के लिए प्रस्थान करने हेतु सुसज्जित हो गए। महाराज लौहत्राण धारण कर योद्धा का वेश पहनकर समस्त सेना के आगे खड़े होने के लिए राजभवन से बाहर निकलने लगे। सभी गुरुजनों ने उनको शुभाशीर्वाद दिया। अंत में राजमाता ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा, पांडव समय समय पर दूत द्वारा अपना कुशल समाचार भिजवाते रहना, संभल कर जाना। मैंने आगे बढ़कर उनके भाल पर केशर तिलक लगाया, झुककर उनके चरण स्पर्श करते हुए धीरे से बोली, आते समय एक आध अच्छी पत्नी भी लाना। मेरे ऊपर उठते ही उन्होंने आश्चर्य से पूछा, पत्नी? हाँ, महाराज की दो स्त्रियाँ होती हैं, एक उसकी पत्नी और दूसरी उसकी प्राप्त की हुई धरती। ठीक है, कहते हुए वे मुड़े और सेना के अग्रभाग में खड़े हुए एक श्वेत शुभ्र अश्व पर आरूढ़ हो गए। उनके संकेत करते कुरुओं की सेना चल पड़ी। त्रिकोणी भगवान ध्वज कपोत के पंखों की तरह लहराता हुआ पूर्व दिशा की ओर चला गया। मेरा मन अभिमान से भर उठा। 25। दूत प्रतिदिन संदेश लेकर आ रहा था। एक के बाद एक राज जीती हुई कौरवों की विजयी सेना रत्न मोती मणि सोना वैदुर्य माणिक्य रूप्य गाय घोड़े आदि कर स्वरूप प्राप्त करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। दशाण मगध मिथिला विदेह काशी सुम पुंड्र आदि सभी देश कौरवों के आगे पराजय स्वीकार कर रहे थे। सेना को बाहर निकले अब 4 मास हो चुके थे। ये 4 मास मुझको 4 युगों की तरह लगे। युद्ध में जाने वाले विजयी वीर की पत्नी की मनोदशा क्या होती है, यह वीर की पत्नी ही जान सकती है। 4 मास बाद संदेश आया कि सर्वत्र यशस्वी होकर महाराज लौट रहे हैं। सारे नगर में उत्सुकता व्याप्त हो गई। महाराज भरत के उपरांत दीर्घकाल तक ऐसी दिग्विजय किसी ने नहीं की थी। मेरा मस्तक अभिमान से उन्नत हो गया। पिताजी ने मुझसे एक बार कहा था, वीरों को विजय की मस्ती में जीना चाहिए। मेरा मन मुझसे कहने लगा, यह मस्ती सांसारिक होती है, कभी कभी वह वीर पत्नी पर भी चढ़ती है। अब मैं दिग्विजयी महाराज पांडव की लाडली पत्नी कुंती थी, महाराजियों की महारानी। किसी ने सच्ची कहा कि मनुष्य के भाग्य का समुद्र कभी कभी ऐसा फैनिल हो उठता है मानो जार आ गया हो। करभार से लेते हुए सैकड़ों गाड़ियां एक के बाद आकर राजभवन के सामने खड़ी होने लगी। उनके पीछे विजयी कौरव सेना नगर में घुसी। अंत में अंबारी में बैठकर महाराज आए। उनकी छाती उन्नत थी, परंतु उनकी बाईं ओर एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। कौन थी वह? महाराज के पास बैठने का साहस उसने कैसे किया? शंका के जोक मेरे स्त्री मन में आ चिपकी। अंबारी महाद्वार पर आई। सदैव की भांति मैं आगे बढ़ी, लेकिन मेरा सारा ध्यान उस स्त्री की ओर था। वह सुंदर थी। महाराज की ओर देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरे संयम के बांध टूटने लगे। अंत में स्वयं महाराज बोले, कुंती, जाते समय तुमने पत्नी लाने के लिए कहा था ना, यह शल्य की बगनी माद्री है, देखो तो तुमसे कितनी अधिक सुंदर है। आह, तो महाराज ने मेरे शब्दों से मुझे ही बांध दिया। पुरुष कोई बहाना मिलते ही कमान मानी कर लेंगे, या कोई स्त्री नहीं बता सकती, और इस राजभवन की तो यह परंपरा ही थी। रात को सेनापति ने मुझको बताया कि मध्य देश के महाराज शल्य पितामह की सहमति से अपनी बहन के लिए विजयी महाराज से पहले ही मिल चुके थे। वैभवशाली कुरुवन से अपना रक्त संबंध स्थापित करने के विचार से महाराज से उन्होंने अपनी बहन माद्री के विषय में स्वीकृति चाही। महाराज ने ही माद्री के सौंदर्य को देखकर अपनी स्वीकृति दे दी। आते समय वे उसको साथ ही ले आए। अब नगर में 2 महारानियां हो गई थी, एक कुंती और दूसरी माद्री। उस रात सोते समय मैंने विचार किया कि अति सुख भी अच्छा नहीं होता। कोई छोटा बालक अतिशय सुंदर होता है तो समझदार माता उसके गाल पर डिठौना लगा देती है। सुख के संबंध में भी यही बात है, उसमें भी कोई ना कोई भागीदार अवश्य होना चाहिए, कहीं ढिठौना होना ही चाहिए। अच्छा हुआ जो महारानी माद्री आ गई। अब यह कुंती मात्र स्त्री के रूप में भी जीने के लिए कुछ अवकाश पा सकेगी। महारानी के कर्तव्यों की आधी धुरी अब माद्री संभालेगी, मुझसे भी अधिक सुंदर होने के कारण महाराज को प्रसन्न रखेगी। आखिर जीवन भी तो एक समझौता ही है।